एशिया आज के मुख्य समाचार ऋषारी जैन के साथ। प्रधानमंत्री ने किया बाढ़ पर अपनी प्रतिक्रिया का बचाव। भारत में वितरित हुए 180 करोड़ से ज्यादा कोरोना रोधी टीके। और पाकिस्तान टेस्ट में उस्मान ख्वाजा के शतक ने ऑस्ट्रेलिया को दी एक मजबूत बढ़त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ की अपनी प्रतिक्रिया का फिर बचाव कर रहे हैं। उन्होंने चैनल 9 से कहा है कि किसी भी आपदा में स्थानीय समुदाय ही सबसे पहले बचाव कार्य करता है।
I understand the frustration because in a disaster like I have seen up in Lismore, no response is ever going to be able to meet the overwhelming need. And the first response always comes from the community, and then it comes from the SES, and then the ADF comes and supports that.
लेबर पार्टी ने फिर एक बार ऑकस अनुबंध के अंतर्गत खरीदी गई 8 न्यूक्लियर सबमरीन का समर्थन किया है। लेबर रक्षा प्रवक्ता ब्रेंडन ओकॉनर ने हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इस योजना पर कितना खर्चा करेंगे। श्री ओकॉनर ने एबीसी को बताया है कि कई ऐसी बड़ी रक्षा चुनौतियाँ हैं जिनकी ओर मॉरिसन सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।
We have advice that talks about an immediate and intense risk to our national security, except we do not see increased firepower to our current defence assets. And we need to see those platforms with better firepower, which will bring about increased deterrent now, not in 2040, not in 2038. And that's one of the problems with this government. It talks big, it delivers very, very little.
देश में कोरोना की परिस्थिति की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में आज 13,093 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में आज 7 कोरोना मृत्यु भी दर्ज की गई है। राज्य में 965 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 44 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं विक्टोरिया में आज 5,192 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की इस वायरस के चलते मृत्यु हो गई है। राज्य में 195 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 25 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। राज्य में इस समय 40,600 सक्रिय कोरोना मामले हैं। मेलबर्न में दो अलग अलग चाकू मारने की घटना में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहले हादसे में एक झड़प के बाद 2 लोग चाकू के घावों के साथ शहर के डॉकलैंड इलाके में मिले थे। इनमें से एक अस्पताल के रास्ते में मृत घोषित कर दिए गए थे, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना में शहर के कोबर्ग नॉर्थ में एक किशोर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दूसरी तरफ क्वींसलैंड में एक सड़क दुर्घटना में 3 पुलिसकर्मी और 1 आरोपी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब पुलिस साउथ कोबुल्टर में एक व्यक्ति को अपने फ्लैटमेट द्वारा चाकू मारे जाने की शिकायत पर प्रतिक्रिया दे रही थी। पुलिस की गाड़ी उस यूट से टकरा गई थी जिसे इस घटना के आरोपी चला रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रेग वाइट का कहना है कि कुल 5 लोग अस्पताल में हैं।
You've got three police in serious condition. You've got one suspect in serious condition as well, and you've also got a victim of a stabbing who's listed as serious as well and also been taken to hospital.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके देश के 1300 सिपाही रूस के साथ इस लड़ाई में मारे गए हैं, पर उनका ये कहना भी है कि रूस का इससे करीब 10 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कीव में प्रेस से बात करते हुए बताया कि रूस अब भी यूक्रेनियाई राजधानी पर बमबारी कर रहा है। उनका कहना है कि रूस कीव हासिल तो कर सकता है, लेकिन इसकी रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी।
Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішують стерти.
If they kill us all and enter Kyiv, if that is their goal, then let them come. If they carry out carpet bombings and wipe off the historic memory of the entire region, the history of Europe, they could enter Kyiv.
Mariupol शहर के निवासी बिना बिजली, न्यूनतम खाने और पानी के साथ भीषण सर्दी का सामना कर रहे हैं। रूसी सरकार का कहना है कि यूक्रेन ने तनावग्रस्त शहरों से लोगों को निकालने के मानवीय रास्ते देने की लगभग सारी पेशकशों को ठुकरा दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन द्वारा सीज फायर लगाने का आग्रह किया है। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सुझाया है कि युद्ध खत्म करने की बातचीत यरूशलेम में की जा सकती है और इसराइल यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। यूक्रेन में इसराइल के राजदूत माइकल ब्रॉड्सकी का कहना है कि यरूशलेम की अपनी प्रासंगिक विशेषता है कि वह सभी धर्मों का शहर है और इसीलिए दोनों रूसी और यूक्रेनियाई पक्ष उस जगह का सम्मान कर सकेंगे। इसराइली प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट ने पिछले सप्ताहांत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे लंबी वार्ता की थी। इसके बाद से श्री बेनेट श्री पुतिन से फोन पर 2 बार और श्री ज़ेलेंस्की से 4 बार बात कर चुके हैं। टेल अवीव में यूक्रेनियाई और इजरायली लोगों ने मिलकर रूसी अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन व्यक्ति का मानना है कि इजरायल रूस और यूक्रेन के बीच संधि कराने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।
We are here to raise our voice and not stand on the side in silence. I want to say regarding the meeting in Jerusalem, I think it's a good idea, and I think Israel can play a significant part in the negotiations between Russia and Ukraine, and they are welcome here. I think that's an excellent idea.
हजारों लोगों ने पेरिस की सड़कों पर उतरकर जलवायु परिवर्तन के संबंध में त्वरित कार्य करने की मांग की है। ये फ्रांस में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के ऐन पहले और यूक्रेन और रूस के बीच तनाव से बढ़ने वाली ऊर्जा की कीमतों के बाद आता है। रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों ने जनता से खनिज ऊर्जा की खपत को कम करने का आग्रह किया है।
Energy pollutes, of course, and we have to lessen our consumption instead. I don't think we have the capacity to switch to all electric. That would mean that we'll have to mine the entirety of Africa, of China, just so I could drive an electric car, and that's not right. We should change the way we function. We have to walk more or use a bicycle. It's unfortunate, but we've been saying for years that we should drive less. Petrol prices had to rise so much before people realized that they have to use their cars less.
वहीं ग्रीस में महंगाई 26 साल में सबसे अधिक होकर 7.2% तक पहुंच गई है। हेलेनिक स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी का कहना है कि ऐसा प्राकृतिक गैस की कीमतों में 78.5% की बढ़त, बिजली की कीमतों में 71.4% की बढ़त और हीटिंग ऑयल के दामों में 41.5% की बढ़त, वहीं ल्यूब्रिकेंट और तेल के दामों में 23.2% की बढ़त के चलते हुआ है। ग्रीस के कुछ हिस्सों में सीसा रहित पेट्रोल के दाम $3 प्रति लीटर तक भी पहुंच गए हैं। और अब खबरें भारत से। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 180 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि 180 करोड़ खुराक देने की संख्या पार हो गई है। जनभागीदारी की भावना से संचालित दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। टीका लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव की सावधानियों का पालन करते रहें। मंत्रालय ने कहा कि लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों में अब तक 2.12 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की बूस्टर खुराक के बराबर है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनावों में जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे तब उनके लिए विकास और सरकारी कामकाज शीर्ष प्राथमिकता थे, जबकि राम मंदिर और हिंदुत्व का उन पर अधिक प्रभाव नहीं था। ये बात चुनाव के बाद किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आई है। सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों में 3 गुना ज्यादा आकर्षण भरा और मोदी के जादू ने 37 वर्षों बाद बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की। लोकनीति CSDS चुनाव सर्वेक्षण कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के एक नए समूह की ओर इशारा करता है, जैसे कि किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी जाति और धर्म के लोगों को मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी, जिसमें सत्तारूढ़ दल को तरजीह मिली। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.99 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा का कहना है कि कराची में उनके परिवार के सामने अपना शतक पूरा करना उनके लिए एक अलग एहसास था। ऑस्ट्रेलिया के इस ओपनर के नाबाद 127 रन ने ऑस्ट्रेलिया को अपने टेस्ट मैच के पहले दिन 251 रन पर 3 विकेट के स्कोर तक पहुंचा दिया था। ख्वाजा का कहना है कि उनका परिवार कराची से है, इसलिए उस शहर में ये शतक उनके लिए और भी खास है।
I mean, after last week, getting 97, it's got to be up there. Obviously, my family's all from Karachi. I was born in Islamabad, but my family's all from Karachi, so... this one meant a lot.
और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी धूप छांव का मौसम बना रहेगा। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में हल्की बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में हल्की बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल धूप छांव का मौसम बना रहेगा। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।